हो जाती है। एक दिन की बात है कि वो ठाकुर जी की पूजा करती थी। बेटे से कहा, जब बेटा मैंने 5-6 वर्ष का हो गया था, बेटा थोड़ा सा वहां पर फूल हैं उसको चयन करके ले आओ। झाड़ियां थी उसी में फूल लगे थे, बेली चमेली के, किंतु झाड़ी थी। वो फूल चुन रहा था और इतने में एक काले सर्प ने ऐसा मारा, एक सेकंड के अंदर में 20 एकदम चारों तरफ में फैल गया और वहीं पर गिर करके मर गया, शरीर काला हो गया। इतने में एक बहरिया जा रहा था, उसने देख लिया और उसने मंत्र के बल से सर्प को एक घड़े में बंद कर दिया, उसका ढक्कन बंद करके, और उसको एक तरफ और बच्चे को एक तरफ गोदी में लेकर के और उसकी मैया के पास में पहुंचा। मैया ने देखा, अरे ये क्या हो गया, सारा शरीर काला और लकड़ी जैसा सूखा होती है, लकड़ी ऐसी हो गई, देख करके छाती पीट करके हारे दैया खा करके वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इसके बाद में फिर होश हुआ तो विलाप करने लगी। थोड़ी देर शांत हुई तो बहलिए ने कहा, हमारे सामने ये सांप ने काटा, बच्चे का कोई भी दोष नहीं था, निकला झाड़ी से उसे काट दिया, बड़े खल जाति के ये सांप होते हैं, तुम्हारे बच्चे को काटा, इसलिए मैंने इसको पकड़ करके लाया हूं, तुम आदेश दो इसे बोटी बोटी काट करके और अभी आग लगा करके इसको जला दूं। इसने कुछ हाँ नहीं उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर वो बोला, 2-3 बार कहने पर इसने कहा, अच्छा बेटा एक बात करो, जब इस सांप को तुम काट करके जला दोगे तो हमारा बेटा जी जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो फिर उसको काट करके जलाने से क्या लाभ, उसे छोड़ दो, इसे हमारा बेटा नहीं आ जाएगा। उसने कहा, जी छोड़ तो देंगे किंतु ये दूसरों को काटेगा, इसे इसको काट मारना जरूरी है, ये खल जाती है बिना किसी कारण से काटे, आज तुम्हारे बेटे को काटा उसको इसको सबको काटे। तो बूढ़ी ने कहा, जी इतना दिन हुआ, इतना दिन तो काटा नहीं और दूसरे को काटा नहीं, हमारे बच्चे को काटा क्यों काटा, बात क्या थी, कुछ जरूर बात है इसमें, कहा जब मैं कुछ भी सुनना नहीं, इसको मैं जरूर मारना, ये बड़ा बदमाश है, दूसरों को काटेगा। सांप ने कहा, सांप ने कहाँ जा रहे हैं, जाओ जाओ तो आओ, तो मैं
जल्दी से चल लेना।
आपको भी तो जाना है ना, तो प्रसाद अभी हो गया है तो प्रसाद पाक करके झट पा लो, मैं कथा समाप्त कर दूं।
शांति पर में उसमें भीष्म पितामह सुना रही है, उसी में भीष्म पितामह
उसी का ही
शांति पर्व में आते
हैं, नहीं भीष्म भीष्म पर्व एकदम गीता युद्ध से पहले
भीष्म पर्व
नहीं गलत गलत होगा।
ये कहना उचित है कि इससे पहले जो श्री अर्जुन की थी वो युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज की हो गई, तो युद्ध से पहले जो स्थिति अर्जुन की थी जिसके नाम गीता सुनाई गई, युद्ध के बाद वही युधिष्ठिर महाराज की थी, जो
युधिष्ठिर महाराज नहीं वो दोनों की स्थिति बहुत ऊंची थी, हमारे देखलाने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं दोनों,
लेकिन दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं थी,
वो एक ही जैसे वो मुक्त लोग हैं, वो दिखलाने के लिए जैसे तैसे कर रहे हैं, द्रौपदी को भी उनसे भी ऊंचा समझिए, वो केवल जगत को शिक्षा देने के लिए आए, तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। देखो सर्प ने कहा,
सर्प बोल पड़ा,
भाई मुझे क्यों मारते हो, हमारा क्या दोष है, दोष नहीं है, तुमने काटा क्यों, तो काटा इसलिए कि काल ने हमको आदेश दिया जी काटो, हमने काटा। इतने में काल वहां आ गए, कहा जैसे हमने कहा था, हमने कहा और तुमने कहा था, बात ठीक नहीं है। किंतु वो बहलिया कह रहा है जो किसी ने भी कहा किंतु तुमने काटा क्यों, इसलिए तुम्हारा भी दोष है, तुमको तो हम मारेंगे ही जब
काल कभी देंगे।
तो काल बोला जैसे हमने तुमको ऐसे नहीं कहा। काल किसको कहते हैं ये समझो, अपना जो कुछ करते हैं उसका जो फल है वो काल है। जो कुछ हम करते हैं इस समय कर रहे हैं वही पीछे से ये काल बन करके आएगा। अच्छा का काल, बुरा का काल, जन्म का काल, ये सब हमारे दुखों के, जो दुख सुख जो कुछ मिलेंगे
कर्मों के फल,
वो कर्मों का फल वो काल कहलाता है। तो इसने ऐसा कर्म किया पहले जन्म में, अब उसका भोग इसको करना पड़ रहा है, मैं इसके कर्मों का फल हूं इसलिए इसे भोगना पड़ेगा। इसलिए न तो हमारा दोष है, न सांप का दोष है, न किसी का दोष है, यह दोष है तो इसी का दोष है, ये अभी मरा है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ आ रहा है। समझ कोई किसी ने हमको एक चप्पड़ मारा, कोई कारण भी तो होगा, क्या कारण, हमने किया रिएक्शन समस्त कर्मों का। इसलिए ये जितनी सेनाएं मरी हैं, जिसको अर्जुन ने, भीम ने या किसी ने नहीं मारा, उनके कर्मों ने उनको मारा है, किंतु लगता है कि इन्होंने मारा। और कृष्ण ने ये दिखला दिया था अपने विश्व रूप में, जो सब मरे पड़े हैं निमित्त मात्र भाव सब कुछ। इसलिए अच्छे और बुरे जो कुछ अभी जो है हो रहा है, जन्म मृत्यु सुख दुख हमारे कर्मों का, अब ऐसा भविष्य से हम न करें, इसके लिए सीखें, भगवान का भजन करें, जो कुछ भी कर्म करें भगवान के लिए करें। What we endeavor, we should try to see that everything, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं बस, और सच कुछ नहीं ऐसा कर, और उसका थोड़ा सा प्रसाद लेकर के जीवन धारण कर। संचय जैसे ये हमारे सब भाई भगवान के सेवक हैं, ये भगवान की सेविका एक नई बेटी आपको दे दी, एक नाती आ गया, ये भगवान का सेवक मान करके कृष्ण की सेवा उसे सिखलाओ, अभी से स्मरण करें, पालन पोषण करो, आसक्त मत रहना, ये मेरा है, ये प्रभु का है, सब समय तुम भी ऐसा ही सोचना, ये प्रभु का दिया हुआ धन है, संपत्ति है, अभी इसको हम मान रहे हैं, सेवा कर, आसक्ति करेगी दुख होगा। भोग लग गया हो तो प्रसाद उत्साह दिलवा दीजिए, नहीं तो विष्णु को जाना है अभी, तब तैयार है तो उनको दिलवाओ, तब तो ठीक है, हमारा आ जाए सब, ऐसे भी आप सुखी रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आए दुखी नहीं होना है। मान लिया कि आपका 3-4 लाख रुपया का घाटा हो गया यहाँ, तो आपका कितना घाटा हुआ, 4 लाख का। आप जब ले करके इस जगत में आए थे कितने लाख रुपया लेकर के आए थे, तो फिर घाटा कहाँ हुआ। आदमी कहता है जी हमारा घाटा हुआ, क्या घाटा हुआ, कुछ लेकर के तो आए नहीं, यहाँ पर जो कुछ था उसमें से कुछ गया, अभी तो पूरा सब कुछ तो है, तो बिलबिला किस लिए रहे। इसलिए चेष्टा करो जो सुखी रहो, भगवान का स्मरण करो, जिनका ये सारा विश्व है उनको प्रसन्न रखो, बस समस्त सुखों की जड़ ये भावना जहां आई सबके प्रति सभी लोग सुखी रहें, बस। तुलसीदास जी का रामायण तो आप पढ़ते ही हैं,
पढ़ा हुआ है, पर पढ़ते गीता मोस्टली।
अच्छा, तो बहुत अच्छा है, गीता रामायण उत्तर कांड जो है एक ही है,
अच्छा,
दोनों में कोई अंतर नहीं। तुलसीदास जी इसने भागवत के चुने हुए श्लोकों को अनुवाद करके अपनी चौपाइयों में भर करके उत्तर कांड में वो सब लेकर के रखा, उसमें एक उन्होंने लिखा है 9 उदाहरण दिए हैं, नौ उदाहरण दिए हैं जिसमें पहला है क्या है पहला अंधकार नभ फूल ही बरु बहु बुद्धि फूला। आकाश में मट्टी पानी तो है नहीं तो वहां पर फूल कैसे खिलेंगे, आधार तो होना चाहिए। आकाश में भले ही फूल खिल जाए, खरगोश के सिर पर सींग जम जाए, ये भी नहीं होता।
मिट्टी से
और अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे,
ये भी हो
सकता। और बांझ का कोई लड़का मर गया हो सकता है ना, बांझ का लड़का
होगा ही नहीं,
बांझ उसमें लड़का ही नहीं है, बांझ बाजी है तो लड़का कहाँ, तो ये भी हो सकता है। हिम से अनल प्रगट बरु हो, बर्फ से आग पैदा हो जाए, नहीं होता।
पानी में से
घी तो पीछे है, अंत में तब अंत में आता है बारी मथे बरु हो ये घृत, पानी के मथने से घी हो जाए। और मट्टी को पीसने से, रेती को पीसने से भले ही तेल हो जाए, किंतु तेनु हरि भजन न भवतर यह सिद्धांत किसी को श्रीमद भागवत में दिखा, उसमें श्लोक है इसमें जो उपाय। इसलिए सर्व से साथ भगवान का नाम करेंगे, तो घना किया जाए, घने में सोने के इससे कोटि कोटि गुण मूल्यवान और लाभप्रद है। इस सोने से कोटि कोटि गुण, यह सौंदर्य बढ़ाएगा, भविष्य में कुछ होगा तो इसको बेच करके अपनी जीविका भी चलाई जा सकती है। ये सब इसमें सौंदर्य को ही बढ़ाएगा, शरीर में कुछ शक्ति देता है। इसके जो कण हैं मुक्त मुक्त में इसके कण आपके शरीर में जा रहे हैं, इसलिए इसमें इसलिए इसका दाम इतना है, किंतु इससे भी करोड़ों गुण लाभ है। उसका दाम कोई नहीं रखा भगवान ने, भगवान ने हवा का दाम नहीं रखा, उसके बिना आप चल नहीं सकते एक सेकंड। और आदमी उसी को इधर उधर कर करके इधर उधर व्यवस्था में और पैसे देगा, भगवान की कोई चीज भी बनाई है उसका कोई भी पैसा नहीं लेता, निस्वार्थ। हम लोग को भी वैसे होना चाहिए, तब जीवन उन्नत होगा। यही तो अभी तक आपने समझा नहीं, वो पहले जन्म का कर्म आप नहीं दिख रहे हैं, जब देख लेते तो कहते यही है ये हमारे दोष से ऐसा हुआ, ये जो बूढ़े हो रहे हैं ये कौन करा रहा है, ये किसका दोष है, ये आप ही का दोष है बूढ़े जो हो रहे हैं। ये चीज ही ऐसी जो बूढ़ी होगी, कपड़े जो पुराने हो रहे हैं ये किसका दोष है, ये संसार की ऐसी ही चीजें हैं। इसलिए आपने ऐसा जरूर कोई कर्म किया है जिससे कि आपको कोई अपमानित कर रहा है, कोई आपको मारने आ रहा है, आप मृत्यु आपकी हो रही है। किस यदि आपको किसी ने नहीं मारा तो मरेंगे कि नहीं, अपने आप मरना पड़ेगा।
ठीक है, पर देश भी लेना चाहते हैं,
देश
भी लेना चाहते हैं,
झगड़
के
देश
बदलना, देश इंडिया, ये सब अभिमान है। कंट्री किसी का भी नहीं है, कोई लेकर के जाता भी नहीं है, कुछ लड़ते झगड़ते हैं, जो
अलग अलग बनाया ना अपना,
अलग अलग कुछ नहीं बनाया, पृथ्वी का विभाग किया उन्होंने, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। एक ही सूरज बनाया, एक ही तरह हवा बनाई, एक ही सब कुछ बनाया।
ठीक है, अगर जो दूसरे लोग ऐसे मान रहे हैं कि एक कंट्री उनकी है,
हमारी कंट्री अलग से,
ये दोनों अभिमानी है,
हमारा कंट्री लेना चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे?
अब आपका अभिमान है इसलिए आप उसके लिए लड़ेंगे, और जिसको ये है जैसे ये प्रभु का है, कहीं जाएगा नहीं, ना कोई लेगा, वो अपने स्थान पर रहेगा, और हम लोग आत्मतत्व हैं तो वो नहीं झगड़ने जाएगा। उसके लिए सारा ये विश्व जो है उसका अपना, ये भारत भी उसका है, अमेरिका उसका है, ऐसा उसका विभाग नहीं रहेगा। वो सोचेगा जी सब विश्व जो है वो अपना है, यही विश्व बंधुत्व है, यहां तक के कीड़े मकोड़े तक सब हमारे अपने, उन लोगों के लिए देश विदेश कहीं नहीं, सब अपना है, प्रभु का है।
हमारे स्वामी से पाकिस्तान में से बताते गए सबको जैसे ज्ञान दिया,
मैं समझ रहा हूँ, किंतु आप अभी सीमित दायरे में हैं।
पर एक ज्ञान आप पाकिस्तान में ही दे सकते,
पाकिस्तान में भी दे सकते हैं, सर्वत्र ऐसा कहीं नहीं है जो नहीं सुने, सब मानने के लिए बाध्य हैं, मानने के लिए बाध्य हैं, सभी नहीं जिनका ज्ञान का विकास हुआ, सभी एमए नहीं पास करते, अभी अपनी छोटी दृष्टिकोण से ऐसा देख रहे हैं, किंतु जब विश्व बंधुत्व की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे जैसे ये सब विभाग हमारे अज्ञान का कारण है, एक प्रभु का बनाया हुआ है, एक ही प्रभु है, कोई अलग अलग कंट्री नहीं है। अब गांव में, अब कंट्री की तो बात कर रहे हैं, गांव और गांव में लड़ाई होती है, उसका क्या करेंगे?
प्रभु अलग है,
हम लोग तो नहीं कहते हैं, कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं ऐसा कहता,
मूर्ख कहते हैं प्रभु,
नहीं हम लोग कभी नहीं कहते, हम लोग नहीं कहते, शास्त्र में बाइबल में भी नहीं कहते,
बाइबल में तो है कि हमारा भगवान
अलग है, नहीं नहीं आपने बाइबल नहीं पढ़ा, हमने बाइबल पढ़ा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, यदि सारे गॉड का किया हुआ है तो फिर अलग कहाँ है? गॉड माने सुनिए, गॉड माने क्या होता है, गॉड माने
जनरेटर,
जी जनरेटर, जो कहते हैं वो मूर्ख हैं, उनके ज्ञान सीमित है, नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं, बहुत बहुत कम उनका नॉलेज है, विवेक नहीं है, जिस समय आंख का पर्दा खुल जाएगा तो वो देखेंगे अरे ये तो मैं गलत कर रहा था। अभी एक मुसलमान यदि मर करके फिर भारतवर्ष में आता है, फिर उसका क्या भाव होगा? यही जैसे भारत मेरा है, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान के ऊपर बम छोड़ो। ये सब चीज इसी से ऊपर उठना है, जब तक शरीर में आप आबद्ध हैं तब तक ऐसा सोच रहे हैं, किंतु धीरे धीरे ये सब वैदिक नॉलेज जो है, क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इसी को कहते हैं, जगत से सब ऊपर उठ जाता है, किसी से द्वेष हिंसा पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब नहीं आता, सबसे मैत्री भाव करुणा का भाव, हम लोगों ऐसी शिक्षा नहीं मिली इसे ऐसा सोचती, जब ऐसी शिक्षा मिलती तो कहीं भी लड़ाई झगड़ा कोई रूल रेगुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। आजकल स्कूल कॉलेज में यह सब शिक्षा, प्रेम की शिक्षा, विश्व बंधुत्व की शिक्षा, आत्मा अजर अमर शाश्वत है, सबको जीने का अधिकार है, वृक्षों को भी जीने का अधिकार है, मछली को भी जीने का अधिकार है, सबको अधिकार है, तब देखिए जिसे कितना आनंद आएगा। जब चले जाएंगे तब इसके लिए आपको
ललक
हो, तब ये हमारा पाठ करना और प्रवचन करना सब सफल हुआ। यदि मेरे स्मरण में यदि एक बूंद आंसू आ गए, मैं समझूंगा जो भगवान
इसलिए भी है, जैसे वैष्णव लोग
लोग जो सुनने में इंटरेस्ट इनको था, अरे ये क्या गबर की बात का, इसमें क्या मंत्र ही भगवान है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ जैसे अपने जॉब में अपना कंसंट्रेट करके करता है, सारी बड़ी फैक्ट्री को सबको संभालता है, वैसे मन लगा करके मंत्र गुरु जी का मंत्र ब्रह्म गायत्री गोपाल मंत्र महाप्रभु जी का आशीर्वाद, हमारे और सब काम भी बन जाएंगे, धीरे धीरे भगवान में रुचि यहाँ रुचि हो गई तब फिर नीचे घटने का, तब बीच बीच में ये सब होने चाहिए, कभी भारत में आ जाओ, कभी हम लोग आ रहे हैं, तुम कभी मत समझना कि हम अब उपदेशक हो गए, ये मत समझना। रामचंद्र जी भी उपदेश है किंतु ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं पूरा हो गया, मैं भी उपदेश हूँ तो पूरा, अभी रियलाइजेशन जो चीजें हैं प्रेम है ये सब कहाँ है, ये सब बहुत ऊपर की चीज, अभी तो पद 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 भूले होंगे। अभी आएगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, फिर सोचना चाहिए मैं किस लायक, ये तो फाउल से गया, फिर उसको सबसाइड कर देंगे ऐसे ही धीरे धीरे, फिर इसके बाद में फिर नहीं है, अभी तो आएंगे। ये देखो तो इतने आदमियों को मैं चमत्कृत कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कोई पेन हो गया तो बिलबिलाने लग गया।
आज आप तो इसलिए ऐसे करते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा भाव पड़े हम लोग।
अरे नहीं मैं ठीक आ रहा हूँ, देखो तो
अभी प्रचार वगैरह करने से ये उल्टा चीजें भाव आने की पूरी
पूरी प्रचार बनिए, जिसका मनी ऑर्डर है उसको पैसा दे आइए, जो आदेश दिया जा रहा है उसको पालन करते चलिए। उन्होंने कहा जिसे जा करके वहाँ पर कहाओ ये हरिनाम के द्वारा कल्याण होगा, अच्छे उपदेश सुनो, ये हमारा उपदेश नहीं, हमारे गुरु जी का ही भी और हमारे गुरु परंपरा का और कृष्ण का महाप्रभु का उपदेश। दो दिन में कमजोर तो नहीं हो गया ये जब से आया हूँ, हाँ हाँ खिलाते पिलाते नहीं है, दुराचारो भजते महामानंद भाग सागरे समन्तव्य संपद बस्ते अपि चेत् सु दुराचारो, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति हो पापी हो तभी यदि अनन्य रूप से मेरा भजन करता है तो उसको धर्मात्मा ही समझो, ये दुराचारी होकर के तो फिर वो भगवान का भजन कैसे करे, या भगवान का भजन करना है तो वो दुराचारी कैसे हो, उसको धर्मात्मा ही मानो, ये सब क्या हुआ
उसको, शंका क्या थी, यही शंका थी कि दुराचारी,
देवताओं को शंका थी
कि दुराचारी होकर के कैसे भगवान
भजन करने वाला दुराचारी कैसे हो।
उसका समाधान कैसे किया,
कैसे किया जरा बोलिए।
उनका निर्णय व्यवस्थात्मिका हो गया, एक निष्ठा बुद्धि किसी को ही पाना ही है जीवन का उन्होंने निर्णय ले लिया, इसलिए वो दुराचारी नहीं है, और उसके दुराचार जो है वो
अपने तो दुराचारो भजते माम भजन कर रहा है अनन्य, अनन्य मैंने क्या
एक निष्ठ
भाव से, और न अन्य फलम अन्य दूसरा कोई फल भी नहीं चाहता उसके पास, ऐसा यदि भजन करता है तो दुराचारी भी है, तो उसको ऐसे समझो जैसे रस्सी की जल, रस्सी जल गई है उसका आयतन केवल है, उसको धर्मात्मा ही समझो, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, तो ऊपर से भी अब पहले तो भीतर से था, अब ऊपर से भी अब दिख पड़ेगा ये धर्मात्मा।
इसकी दूसरी लाइन में आपने लिखा है वहाँ पे, क्योंकि उसका निश्चय जो है वो सम्यक हो चुका है, उसने निश्चय जो है ठीक ले लिया है,
निश्चय लेकर के ही तो उसमें लग गया है, ये निश्चय उसका, इसलिए वो उसको मत, अब ये मत देखो जैसे अब ये दुराचारी है, उसका संग मत करो उस समय पर भले, किंतु उसकी निंदा इत्यादि मत करो। जब उसके आचरण भी शुद्ध हो जाएंगे तब उसका संग करो, किंतु उसको भीतर से समझो ये भगवान का यदि नाम कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तभी कुछ दुराचार हैं दिख पड़ रहे हैं, या पिछले जन्म में किया है या इस जन्म में कर रहा है, तभी उसको साधु मान करके निंदा मत करो।
लेकिन इसमें आपने गीता में महाराज जी गीता में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है मंतव्य शब्द को लेके, तो क्या उसको मान लिया जाए कि वो साधु जैसा ही है? तो वहां लिखा नहीं माना नहीं जाए, वो साधु ही है। ये अगर खाली ऊपर से मान रहे हो तो आप इस लाइन के भगवान के ऐलान जो कह रहे भगवान के प्रति वो है,
उसको माना माने यही माने ही है, इस विधि का उल्लंघन मत करो, निश्चय समझो, नहीं समझ में आने पर भी तभी समझो, वो जो अनन्य भाव है यही मूल चीज है, अनन्य भाव आ गया तो स्वाति
किसी भी अजामिल की कथा आ
जाती। महाराज जी आपने एक गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा में समझाया कि जो गायत्री मंत्र है वो वैकुंठ की सीमा तक लेकर के जाता है, उसके आगे उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन बृहद भागवत अमृत में जो गोप कुमार है वो तो नारायण लोक में जाकर के फिर नारद जी उसको उनको शिक्षा देते हैं हरि नाम करने की, वहां तक तो वो गोपाल मंत्र कर रहे होते हैं नारायण लोक में भी पहुंच करके, उसका समाधान कैसे किया? नारायण लोक में भी गोपाल मंत्र है,
मंत्र जो है सब मंत्र एक से नहीं, इसमें गोपाल मंत्र जो है स्पेशल है, गोपी जन बल्लभ है, ये संबंध को याद रखने के लिए वहाँ पर कहा जा रहा है, मंत्र नहीं ले जाएगा, अब वो संबंध जो वो पक्का कर रहा है गोपाल से उसका संबंध है, ये संबंध उसको ले जाएगा, किंतु अब वहाँ पर मंत्र नहीं रह करके अब हे कृष्ण हे गोपाल हे दामोदर हे यशोदानंदन गोपी जन बल्लभ, अब इस रूप में आ जाएगा संबोध, वहां पर साधन नहीं है ये चीज समझो, वैकुंठ में वो सब साध्य में चला गया, साधन हो गया उसका, इसलिए मंत्र जो है साधन है, नाम साधन और साध्य दोनों है, इस चीज को समझो,
मंत्र नाम रूप में परिणित हो गया,
तो अब उसमें नमः स्वाहा इत्यादि और क्लिंग ये सब हो गया, तो आप गोपी जन बल्लभ हे गोपी जन बल्लभ हे कृष्ण हे गोविंद ये ऐसे होने लग जाए,
पुकार जैसी हो
जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुकुंद
गोविंद
गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनय प्रसीद श्री बल्लभी जीवन आराम, अभी ये आ जाए पहले क्लिंग गोविंदाय अमु संख्या।
तो महाराज जी जैसे आपने कहा कि जो नाम है वो साधन और साध्य दोनों है, वो इसलिए कि मंत्र का स्वरूप कृष्ण का स्वरूप नाम जो है वो कृष्ण से अभिन्न है, तो मंत्र भगवान से इसका मतलब भिन्न है, जैसे कहा
अभी वो नमः लगा करके संबंध के लिए कर दिया गया साधन के लिए, वैकुंठ जगत में तो साधन है नहीं, अब रही एक संबंध परिपक्व होने की बात, तो ये साधन नहीं है सब पूरा हो जाता है, इसलिए ब्रह्मलोक तक सब साधन है, इसके बाद में वैकुंठ में साधन है, इसलिए इस चीज को बताया गया, यद्यपि यदि कह रहे हो राम कहाँ राम अयोध्या तक में वो मंत्र जप रहा था,
नहीं नारायण लोक तक, नारायण में जब उनका मन थोड़ा उच्छिन्न विच्छिन्न हुआ तब नारद जी ने आकर के उनको शिक्षा दी, किसके बाद
ऐसा हो सकता है कि प्रारंभिक स्थिति में उस मंत्र का प्रभाव कुछ हो रहा है, प्रवेश किया है ना पहली बार, इसको इसी रूप में समाधान तब तक अभ्यास चला रहा है, अब वैकुंठ पहुंचने पर उसको छोड़वाने के लिए नारद जी ने उपदेश दिया, ऐसा
तो उस मंत्र में तो महाराज कृष्ण के नाम ही है,
नाम तो है किंतु नमः और ये सब लगाया गया है ना, नमः माने तुमको हम नमस्कार करते हैं, ये साधन हो गया, वहाँ पर नमस्कार इत्यादि का ये सब विशेष भाव नहीं है,
लेकिन वो ब्रह्मादा जी उसमें यही होना बैकुंठ तक जाने तक अभी उनका कृष्ण के संग संबंध नहीं जुड़ा था ना, इसलिए उस मंत्र का सहारा लेना पड़ा होगा।
अनुभूति नहीं थी ये, नहीं संबंध तो जुड़ ही गया था, जैसे हम लोगों का संबंध तो जुड़ा हुआ है किंतु परिपक्व नहीं है, अभी इसकी अनुभूति नहीं है। करते 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 हम बैकुंठ के आधार पर जब जाएंगे उस स्थिति में जागतिक कोई भी धारणा नहीं रहेगी, इसी का नाम बैकुंठ, उस स्थिति में जाएंगे तो ये सब दूर हो जाएंगे। तब हम लोग जो इस जगत में हमने सुना है, जिसका अजन साधन ये कर करके गोपियों के प्राण बल्लभ हमारे प्राण बल्लभ है, ये सब जब भाव पूरा हो गया हम कैसे कैसे वहाँ पर सेवा करेंगे, इसकी भी वहाँ पर एक छवि आपको मिल गई, ट्रेनिंग मिल गई, अब वहाँ पर जा करके काम कर। अभी तक आपको ट्रेनिंग चल रही है, अब आप जॉब में जा रहे हैं किंतु अभी भी आपकी ट्रेनिंग कुछ हो रही है, कुछ दिनों के बाद में तब आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, स्वयं आप काम करें।